ओम
ओम
ओम।
दैनिक स्वाध्याय क्रम में विद्यारण्य स्वामी विरचित एवं भारती तीर्थ स्वामी के द्वारा पूरित पंचदशी का नौवां प्रकरण ध्यान दी प्रकरण आप लोग सुन रहे हैं ना। अभी शेट्टी जी बता रहे थे कहां 23-24 तक हो गया ना इसका। चलो थोड़ा एक चावल को निकाल करके देखें कि पूरा पका हुआ है कि कहीं थोड़ा कण बाकी है। हाँ ठीक है, थोड़ा चावल देख लो भात बन गया है कि कुछ कसर है। अच्छा एक बात बताइए थोड़ा इसमें मुझे, इसको ध्यान दीप क्यों बोलते हैं? इस प्रकरण को ध्यान दीप क्यों बोलते हैं? ध्यान करना पड़ता है, किसका ध्यान करते हैं? कहाँ समाधि बताइए, इसमें कौन सी समाधि है? ब्रह्म का ध्यान है, आत्मा का ध्यान। तो ध्यान तो मन से ही करोगे ना, तो आत्मा मन का विषय है, तो जो मन का विषय नहीं है उसका फिर मन से ध्यान कैसे करोगे बताइए आप? प्रश्न खड़ा है कि नहीं? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनो, तीनों की ही पहुंच नहीं है। कर्मेंद्रिय से पकड़ा नहीं जा सकता, ज्ञानेन्द्रियों से उसको जाना नहीं जा सकता, और मन की वहां पर पहुंच नहीं है, तो फिर ध्यान कैसे करोगे? और इस प्रकरण का नाम ही दिया गया है ध्यान दीप। तो जो ध्यान का विषय नहीं है, चलो कोई बात नहीं, निराकार ध्यान का विषय न हो पर साकार हो जाए। शिव महिमन स्तोत्र में बता दिया कि अतीत पंथानम तवच महिमा वांग मनसयो, ये तो वाणी के मार्ग से बहुत आगे हैं और मन से भी बहुत परे हैं, अतीत है, ये उसकी स्तुति नहीं कर सकते, वाणी उसको बोल सकती ही नहीं है, मन उसका मन कर ही नहीं सकता है, मनन नहीं कर सकता। येन मनसा न मनोते येन आहुर मनोमतम, और फिर यहां उसका ध्यान करवाया जा रहा है। तो हो सकता है कि पदे त्वरवाची ने पतते न मन कस्य न वच, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व है वो तो वाणी और मन का विषय नहीं है, पर साकार में हमारी वाणी भी उसका वर्णन कर पाएगी, हमारा मन भी उसमें लग जाएगा, और जिसको बोला है जिसको देखा है आंख बंद करके उसका ध्यान भी हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि ध्यान दीप में साकार का ही ध्यान होगा, वंशी विभूषित करान नवनिर्दाभात होगा, पर वैसा भी यहां अब तक तो आपने पढ़ा नहीं है और शायद आगे भी ना आवे। अब मान लीजिए कि वो निराकार के संबंध में नहीं है, इसको साकार का मान लिया जाए, तो साकार का तो ध्यान संभव है कि नहीं है ना? पर साकार जो कोई वस्तु होगी वो व्यापक होगी कि परिच्छिन्न होगी? परिच्छिन्न होगी। तो साकार वस्तु परिच्छिन्न होगी, और जो परिच्छिन्न वस्तु होगी वो अविनाशी नहीं हो सकती। यावद विकार तावद विभाग, यावद विभाग तावद विकार, जो विभाग है जो परिच्छिन्न है जुदा जुदा है अलग अलग है वो कार्य होगी विकार होगी, और जो कार्य है उसका विनाश जरूर होगा ही होगा। तो यदि साकार का हम ध्यान करते हैं तो साकार तो कार्य होगा और कार्य विनाशी होगा, तो विनाशी का ध्यान करने से हम अविनाशी कैसे हो जाएंगे भाई? तो साकार का ध्यान करने से भी क्या मिलेगा बताओ? तो निराकार का ध्यान संभव नहीं और साकार का ध्यान करने से इष्ट सिद्धि नहीं। हमें तो अविनाशिता को प्राप्त करने के लिए साकार का ध्यान कर रहे हैं और स्वयं जो साकार का आकार है वही अविनाशी नहीं है, तो हम अविनाशी भाव को कैसे प्राप्त कर लेंगे, एक प्रश्न खड़ा होता है। इस प्रश्न के उत्तर में ही ध्यान दीप प्रकरण चला है। ये जो प्रश्न है इसी के उत्तर में ध्यान दीप चला है कि निराकार का ध्यान संभव नहीं और साकार का ध्यान है तो वो तो विनाशी होगा, तब कैसे ध्यान किया जाए। तब यहां पर बहुत सुंदर विधा देकर के बता रहे हैं। अब तक जो आप लोगों ने इसमें अध्ययन किया होगा, भ्रम आया है, दो प्रकार का भ्रम आया आपके सामने, संवादी भ्रम विसंवादी भ्रम। अब देखिए साकार का जो ध्यान है वो भी भ्रम है और यदि निराकार को आप चिंतन करते हैं तो वो भी भ्रम है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवच्च यत्र उपनिषद ने कहा है कि वो शब्द रूप ही नहीं है। तो अभी प्रवचन सुना ईशावास्य उपनिषद में, शब्दों से सुना कि बिना शब्द के सुना, पंचदशी का स्वाध्याय कर रहे हैं वो शब्दों से ही तो कर रहे हैं, तो जो शब्द रूप ही नहीं उसको शब्द से कैसे जान रहे हैं, शब्द उसका वर्णन ही नहीं कर सकता, ये भी तो एक भ्रम ही तो है। तब इस शंका का समाधान करने के लिए कहते नहीं नहीं आप ध्यान करिए, शास्त्र ने जो कहा है वो ध्यान भी आपको उस परमात्मा की अनुभूति करवा देगा। यद्यपि ध्यान स्वयं भ्रम है लेकिन भ्रम भी कभी उस सत्य तत्व की प्राप्ति करवा देगा। उसी को बताने के लिए बहुत सुंदर प्रसंग यहां पर आया है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैंने भी पूरा देखा नहीं तो क्रम से देख करके थोड़ा आगे निकल जाए हम लोग कि ये ध्यान दीप इसका नाम क्यों दिया गया है। ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना ये भी भ्रम ही है। हां पर ऐसा भ्रम है जो आपको सत्य तक पहुंचा दे, संवादी भ्रम है, विसंवादी भ्रम नहीं है। यही दृष्टांत यहां पर देख करके बताने जा रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है भ्रम होते हुए भी यथार्थ तक हम लोग पहुंच जाते हैं। जो हमारा प्राप्तव्य है, जिसको हम जानना चाहते हैं, वो प्राप्तव्य ज्ञातव्य उसको भ्रम से भी जाना जाता है। उसमें प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीनों प्रमाण को लेकर के यहां बहुत सुंदर विचार दिया गया है। आप लोगों ने को दोहरा लें, अध्ययन किया है, आपको ध्यान में है, इसलिए यहां पर दो प्रकार के जो भ्रम बताए जा रहे हैं है तो ये भी भ्रम ही, परंतु एक संवादी जो भ्रम होगा वो यथार्थ तत्व का बोध कराने वाला होगा। अब भ्रम तीन प्रकार से हो जाते हैं, प्रत्यक्ष में भी भ्रम होता है, अनुमान में भी भ्रम होता है और आगम से भी भ्रम होता है। लेकिन वो देखो एक संवादी भ्रम यदि होता है तो यथार्थ तत्व तक हमको पहुंचा देता है। हां विसंवादी जो भ्रम होगा वो भटकाता ही रहेगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो अशब्द है उसको शब्द से नहीं कहा जा सकता, जरूरी नहीं है कि जो वाणी का विषय नहीं है उसको वाणी से नहीं बोला जा सकता, जरूरी नहीं है कि जो मन का विषय नहीं है उसको मन से मनन नहीं किया जा सकता। ठीक है ये भ्रम है लेकिन संवादी भ्रम है, अशब्द को भी हम शब्द से लक्षित कर सकते हैं। जो वाणी का विषय नहीं है उसको वाणी से ही लक्षित किया जाएगा, ये सत्य नहीं है ये साधन है लेकिन सत्य तक ये पहुंचाने वाला होता है, इस बात को इस प्रकरण में बताया गया है। संवादी भ्रमवद ब्रह्म तत्वोपास्त्यापि मुच्यते उत्तरे तापनीयोत श्रुतोपास्ति अनेकधा। ये पहला श्लोक जो आपने देखा था यहां पर क्या अर्थ होगा भाई इसका? पहले वाला चावल तो थोड़ा सा कच्चा था, अब इसको देखें कितना कच्चा। क्या होगा? संवादी ब्रह्मवद ब्रह्म तत्व उपास्यापि मुच्यते उत्तरे तापनीयोत श्रुतोपास्य अनेकधा। आचार्य जो भी लिखते हैं देखो श्रुति को तो सामने रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि श्रुति प्रमाण सर्वोत्कृष्ट प्रमाण माना जाता है। जितने भी प्रमाण है उसमें सबसे यहां जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो है श्रुति। श्रुति ने जो निर्णय दे दिया अब उसके सामने फिर तर्क नहीं चलता, वहां वकालत की जरूरत नहीं पड़ेगी निर्णय के बाद। इसलिए यहां उपनिषद को सामने रखा है कि जो संवादी ब्रह्म जैसे होता है ब्रह्म तत्व उपास्यापि मुच्यते। देखो ब्रह्म तत्व जो है अब उसकी उपासना कैसे करोगे जी आप? उपासना में तो उसका चिंतन ही तो होगा ना, तो ब्रह्म तत्व की उपासना कैसे होगी? तो ऐसे ही उपासना होगी जैसे संवादी ब्रह्म में होती है, ऐसे तापनीय उपनिषद में उसको स्पष्ट किया है, आप उसको विस्तार से देख लेना। अब ये इसका जो उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर है, कहते देखो दो जगह भ्रम होता है, एक भ्रम होते हुए भी ऐसा होता है जो तत्व की प्राप्ति करवा देता है। उसका उदाहरण दिया कि मणि प्रदीप प्रभवयोर मुनि बुद्धियाभि धावतो। एक व्यक्ति ने कोई प्रकाश देखा, किसी खिड़की में से प्रकाश आ रहा था और प्रकाश को देख करके उसको लगा कि ये मणि का प्रकाश है। दौड़ करके मणि उठाने के लिए गया, मणि प्रदीप प्रभयो, दो प्रकार का प्रकाश है, एक मणि प्रकाश है और एक प्रदीप प्रकाश है। मणि स्वयं से प्रकाश निकल रहा है और एक दीपक जलाया हुआ है उसका प्रकाश। आजकल देखो खिड़की के अंदर की तरफ प्रकाश आप मणि रख ये दीपक जला करके रख दो और बाहर जो शीशा इस तरह का होता है कि उसमें ऐसे जैसे कोई मणि की किरणें निकल रही हो प्रकाश दिखाई पड़ता है। अब मणि तो अंदर रखी हुई है खिड़की में आलमारी में आले में और उसका प्रकाश बाहर फैल रहा है। एक तो उसका प्रकाश दीपक का प्रकाश होता है और इसी प्रकार एक होता है मणि का प्रकाश। सामने वाले व्यक्ति को तो केवल प्रकाश दिखा है और उसको भ्रम हुआ कि ये मणि का प्रकाश है, उसको ज्ञान नहीं है कि मणि का ही प्रकाश है, उसको केवल ये भ्रम हुआ है कि प्रकाश मणि का हो सकता है। अब वो मणि समझ करके ही वहां गया लेकिन देखा कि वहां मणि नहीं थी, वो दीपक जल रहा था उसका प्रकाश था। धोखा हो गया कि नहीं? आगे गया उसने देखा कि फिर मणि एक प्रकाश उसी तरह से चमक रहा है। एक व्यक्ति सोचता है कि वो तो पहले भी धोखा हो गया, हमने मणि समझी थी और वो तो प्रदीप का प्रकाश था। दूसरा व्यक्ति ने सोचा कि चलो हो सकता वहां धोखा हो गया या सही भी हो, तो खिड़की पर जाकर के उसने देखा तो सचमुच में वहां से वो मणि का ही प्रकाश निकल रहा था। तो प्रकाश तो दोनों देते हैं, अब प्रकाश को दूर से देखा ये तो भ्रम ही तो था, उनको कोई निश्चय तो नहीं था कि मणि ही है या प्रदीप प्रकाश तो मणि नहीं है, यह भी ज्ञान नहीं था, केवल प्रकाश को लेकर के गए हैं। इसलिए वहां पर उस भ्रम के दो भेद कर दिए गए कि समझा तो दोनों ने मणि प्रकाश ही है पर एक जगह मणि प्रकाश मान करके गए हैं और मणि मिल गई और एक जगह मणि मान करके गए हैं लेकिन प्रदीप प्रकाश मिल गया, मणि थी ही नहीं। तो जिसको जो माना गया था, मानना तो भ्रम ही तो होता है ना। अरे भाई एक गोल मटोल पत्थर को हमने शिवजी मान लिया और एक पत्थर को हमने विष्णु जी मान लिया तो है तो भ्रम ही है कि नहीं बताओ? भ्रम है कि नहीं? वो पत्थर तो वो भी भ्रम है, वो शिव जी नहीं है, और वो शालिग्राम का जो पत्थर देखते हैं वो विष्णु जी नहीं है, वो तो भ्रम ही तो है। लेकिन वो कौन सा भ्रम है? वह शिव की भावना कर देंगे, वहां पर विष्णु की भावना कर देंगे तो वो संवादी भ्रम होगा। वहां तक जाने पर यथार्थ जो शिव तत्व है हम उसको भी प्राप्त कर लेंगे, तो वो होगा संवादी भ्रम। और जहां पर माना कुछ है लेकिन जाकर के देखा तो वो चीज न मिली, उसके विरुद्ध निकली, विपरीत निकलती है, उसको बोलते हैं विसंवादी भ्रम। ये बात यहां पर बता रहे हैं कि मणि प्रदीप प्रभवयोर मणि बुद्धियाभिधावतो, मणि की बुद्धि से जो दौड़ करके गए हुए पुरुष हैं, किसमें? काल मणि और प्रदीप की प्रभा में। एक ने तो मणि को देखा और एक ने प्रदीप प्रकाश को देखा, उसमें मणि की बुद्धि से जो दौड़ करके गए हुए पुरुष हैं, मिथ्या ज्ञान विशेषेपि, दोनों में जो प्रकाश दिखाई पड़ा था उस स्थिति में तो मिथ्या ज्ञान ही था, उनको निश्चय तो था ही नहीं, परंतु विशेष शोक्रिया अर्थ क्रियाम प्रति। अब ज्ञान तो दोनों का अविशेष है, मिथ्या ज्ञान ही है, लेकिन विशेष क्या है यहां पर? अर्थ क्रियाम प्रति, जो अर्थ क्रिया है उसमें वहां पर विशेषता आ जाती है। क्या विशेषता आती है? उसको नीचे वाले श्लोक में बता दिया कि एक में तो मणि मिल गई और एक में धोखा हो गया, मणि नहीं वहां पर प्रदीप का प्रकाश मिला, ये विशेष अंतर आ जाता है वहां पर। दीपोपवर्कस्यांतर वर्तते तत्प्रभाव ही दृश्यते द्वारी यथा अन्यत्र तद दृष्ट्वा तद्वद दृष्टा मणे प्रभा। दीपो अवरकस्य अंतर वर्तते तत प्रभाव ही, जो दीप है वो कहां रखा हुआ है? अपवर्कस्य अंतर वर्तते, अपवर्क का अर्थ ये समझ लो जहां पर वो दीपक को रखते हैं, गोलक जैसे होता है, आलमारी जैसा आला होता है, हाँ? वो कड़ा वो सर पहले पुराने जमाने के सिस्टम है सारे, जिस समय ग्रंथ लिखे गए ना ये सिस्टम नहीं था सारा, तो दीवारों में दीपक रखने की जगह रखते थे, गोलक वार रखते थे, उस स्थान को बोलते हैं पर्वक से अंतर्वर्त थे, और वहां दीपक वहां रखा हुआ उसके अंदर पड़ा हुआ है तत्प्रभा बही, और उसका जो प्रकाश है बाहर खेद रहा है। कई बार बोलते हैं ना वो दहली दीपक का न्याय नहीं बोलते हैं, दीपक को ऐसी जगह रख दिया करते थे जो भीतर भी प्रकाश फैल रहा हो बाहर भी प्रकाश फैल रहा हो, तो जिस जगह पर दीपक रखा जाता है वो तो है दीपो अपवर्क रखने की जगह, और उसका जो प्रकाश है प्रभा वो वही बाहर फैल रहा है, घर में भी है ठीक है, बाहर भी उसका प्रकाश फैल रहा है। दृश्यते द्वार यथा अन्यत्र, बाहर द्वार की तरफ वो प्रकाश दिखाई पड़ता है, अन्यत्र तद्वद्दृष्टा मणे प्रभा, इसी प्रकार से तद्वत माने जैसे वो दीपक का प्रकाश फैल रहा है वैसे भी मणि भी पड़ी हुई है, जैसे दीप अपवर्क में दीपक पड़ा हुआ है ऐसे ही एक जगह है अपवर्क जो जहां मणि रखी हुई है, और मणि की प्रभा भी इसी प्रकार से बाहर फैल रही है, दोनों फैली हुई है। दूरे प्रभावाद वयम दृष्ट्वा मणि बुद्ध्याभिधावतो, अब कहते हैं यथाविधम प्रभा द्वयम दूरत्व दृष्ट्वा, दूर में कोई व्यक्ति खड़े हैं और उन्होंने प्रभा द्वयम दृष्ट्वा वो दोनों प्रकार की प्रभा को देखा, हो सकता है एक मकान में एक जगह मणि पड़ी हुई हो और एक जगह पर दीपक जल रहा हो, कल्पना कर लो दोनों जगह से प्रकाश निकल फैल करके बाहर आ रहा है, दोनों ने दोनों जगह प्रकाश देखा। मणि बुद्धियाभिधावतो, दौड़ करके गड़े मणि की बुद्धि से कि यह मणि है, अब उसमें यह हुआ कि प्रभाया मणि बुद्धि तू मिथ्या ज्ञानम द्वयोरपि, अब उस प्रकाश में जो मणि की बुद्धि हुई है, क्या वो प्रकाश मणि थी? मणि का प्रकाश अलग चीज है, प्रकाश तो मणि नहीं है ना। मणि का प्रकाश हो सकता है, लेकिन अब प्रकाश को देख करके हुआ अरे मणि, और दौड़ करके गए, मणि को तो देखा ही नहीं है। उन्होंने देखा किसको? जो उनका विषय है, दृष्टि का विषय है, वो मणि नहीं है, वहां पर प्रकाश है। और प्रकाश तो मणि है ही नहीं, न तो मणि का प्रकाश मणि है और न दीप का प्रकाश मणि है, प्रकाश तो मणि है ही नहीं। तो प्रकाश को अगर देखते हैं तो वो तो भ्रम ही है, प्रकाश तो मणि नहीं है। यही बात बोलते प्रभायाम मणि बुद्धि, उस प्रकाश के अंदर जो मणि बुद्धि हुई है मिथ्या ज्ञानम, वो तो मिथ्या ज्ञान है। द्वयोरपि, दोनों ही जगह पर, चाहे मणि का प्रकाश हो चाहे प्रदीप का प्रकाश हो, प्रकाश के अंदर मणि बुद्धि तो मिथ्या ही है दोनों जगह पर। प्रकाश में मणि बुद्धि सत्य नहीं है, इसलिए न लभ्यते मणिर दीप प्रभाम प्रत्यभिधावता, न लभ्यते मणि दीप प्रभाम प्रत्यभिधावता। अब दो जगह प्रकाश था, दो ही व्यक्ति हो कल्पना कर लो, तो एक व्यक्ति जो मणि प्रदीप था, ये क्या प्रदीप प्रभा दीपक की जो प्रकाश फैल रहा था, वो उधर भाग करके गया कि ये मणि है। तो जिस प्रकाश में मणि बुद्धि की गई थी वो प्रकाश को तो पकड़ नहीं सकता। अब प्रकाश जहां से निकल रहा है उसको पाने के लिए दौड़ रहा हो, प्रकाश को पाने के लिए थोड़े दौड़ता है। भ्रम तो प्रकाश को देख करके हुआ ना, पर पाना किसको है? मणि को, प्रकाश को नहीं पाना है। अब जिसका प्रकाश निकल रहा है उसको यह हुआ कि मणि से निकल रहा है, उसको पाने के लिए गया, परंतु न लभ्यते मणि दीप प्रभाम प्रत्यभिधावता, दीप प्रभा के प्रति जो दौड़ करके गया हुआ है, मणि न लभ्यते, उसको मणि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो प्रभाव वो प्रकाश, हाँ दीपक का प्रकाश है, मणि का है ही नहीं, इसलिए मणि न लभ्यते, मणि प्राप्त नहीं होगी। परंतु प्रभायाम धावता अवश्यम लभ्यते एवं मणिर मणे है, मणे प्रभायाम धावता। दूसरा एक व्यक्ति था, वो जिस आलमारी से जिस खिड़की में से मणि की प्रभा फैल रही थी उधर ही दौड़ करके गया, तो अवश्यम मणि लभ्यते एवं, निश्चित रूप से मणि को ही प्राप्त करता है। अब यहां पर यह चीज हो गई कि प्रकाश दोनों जगह हैं और जिसका प्रकाश है दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, और ब्रह्मस्थल में दोनों ने एक चीज समझी है मणि, ये प्रकाश मणि का है, तो ब्रह्म प्रकाश में हुआ, पाना था मणि, परंतु दोनों प्रकाश मणि का नहीं है, एक प्रदीप का है। तो जिसको मणि के प्रकाश में मणि का भ्रम हुआ उसको तो मणि मिलेगी ही मिलेगी, परंतु जिसको प्रदीप के प्रकाश में मणि का भ्रम हुआ उसको मणि कहां से मिल जाएगी? दीपक मिलेगा उसको, तो दीपक थोड़े पाना था, उसको तो मणि पानी थी। अब भ्रम क्यों हुआ उनको? प्रकाश को देख करके, तो प्रकाश तो भ्रम ही था, पर एक भ्रम ऐसा हुआ जिसने मणि तक पहुंचा दिया, और एक भ्रम ऐसा हुआ जहां मणि का नामो निशान नहीं है। बस यही अंतर आया यहां पर। दीप प्रभा मणि भ्रांतिर विसंवादी भ्रम स्मृत, मणि प्रभा मणि भ्रांति संवादी भ्रम उच्यते, ये अपने आप उत्तर निकल गया है। पंचदशीकार की शैली बहुत सुंदर है। साधना सदन में मैं 85 में ही गया था, शायद अप्रैल मई का ही समय था, तारीख तो ध्यान नहीं रखी, उस समय सोचा भी नहीं था कि तारीख भी कभी याद करने की होती है। तो पढ़ने की दृष्टि से गया था, वेदांत का अध्ययन करेंगे, और ये धुन लगी हुई थी कि पहले महाराज जी से पंचदशी पढ़ेंगे। भटकते भटकते गया वो इधर उधर, कैलाश में भी गया, परमार्थ में भी गया, कई गुफा में एक महात्मा रहते थे गंगा किनारे, मस्तराम बाबा, आप लोगों ने कई दर्शन किए हो, नाम ही मस्तराम थे और काम भी मस्त ही था उनका, बैठे रहते थे। आप जैसे श्रद्धालु कुछ गए, खाने पीने का प्रसाद फल लेकर के गए, तैयार करके मुंह में डाल दिया, जैसे मां बच्चे को डालती, डाल दिया, उनकी मौज खा लिया तो खा लिया, नहीं तो उठा करके खाते हुए नहीं देखा। कई लोग चढ़ा करके चले जाते महाराज ने खाए तो, हमारे जैसे कोई जाते रोटी राम उनको प्रसाद में दे देते। हां, सबके पास गए हम लोग, फिर साधना सदन में महाराज जी के पास गया। तो शुरू शुरू में शिष्यों की परीक्षा तो होती ही है, साधना सदन में गए तो सेवा कार्य हाथ में लगा, और ऐसा सेवा कार्य के दिन भर सेवा का तो अंत आता ही नहीं। कबीर वाली बात हो गई कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, वहां भी सेवा तैयार, 10-15 दिन देखता रहा, सोचता रहा, जिसके लिए आया हूं वो तो बहुत दूर हो गया, यहां भी सेवा ही सेवा है और स्वाध्याय तो है ही नहीं। तो एक रोज महाराज जी को मैंने कहा, महाराज जी दिन के भोजन के बाद का मैं सप्त सरोवर की तरफ जा रहा हूं। बोले वहां कौन है, कोई मिलने वाले हैं? मैंने कहा ऐसा तो कोई नहीं है। तो फिर किस लिए जा रहे हो? मैंने कहा महाराज जी कोई पंचदशी पढ़ाने वाले मिल जाए तो पंचदशी का पाठ लगाना है। गुरु जी कहते हैं ऐसा करो, करीब 1:30 बजे ऐसा कोई टाइम दिया दिन को, और कहा कि 1:30 बजे आ जाओ, मैं स्वयं तुमको पंचदशी पढ़ाऊंगा। 1:30 बजे आ जाओ, सेवा का फल तो है उमा बहन, पर 1:30 बजे दिन का खा करके महात्मा खर्राटे मारे, अब पढ़ने के लिए जाए तो वहां बैठते नींद आएगी। मन में सोचने लगा, थोड़ा विश्राम का टाइम ही 1-1.5 घंटा मिलता रहा, और फिर ठीक है पढ़ना था। मैंने कहा महाराज जी मैं 1:30 बजे आ जाऊंगा। बैठने लगा तो 1, 2, 3, 4 करते करते 20-25 साधक हो गए, सूरतगिरी बंगले से, कृष्ण निवास से, संन्यास आश्रम से कई साधक साधिकाएं और ब्रह्मचारी आने लगे। महाराज जी का विश्राम तो आपने क्या देखा, मैंने देखा है। महाराज जी लेट गए तो मैंने सोचा चलो महाराज जी सो गए, थोड़ा मैं भी 10 मिनट लेट लूं, मैं बाथरूम होकर के लेटने लगूं, इतने में तो महाराज जी की आवाज आ जाए, फिर उठ जाते। कब सोते कब उठते समझ में नहीं आती। रात्रि को 11 बजे से पहले कभी सोते हुए नहीं देखा, और सवेरे 4 बजे के बाद फिर कभी सोते हुए नहीं देखा, और दिन में सोना कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा बहुत कम सोना। पंचदशी महाराज जी पढ़ाते थे, कभी पुस्तक हाथ में लेकर के नहीं पढ़ाया। पूरी पंचदशी महाराज जी को कंठस्थ थी, मुख्य पुस्तक मेरे पास होती और बोले क्या श्लोक क्या है, मैं श्लोक का उच्चारण करता और महाराज जी फिर पूरा श्लोक की व्याख्या करते जाते। बस पंचदशी पढ़ते पढ़ते ही फिर चातुर्मास भी आ गया, चातुर्मास पूरा हो गया, गुजरात गए, फिर बंबई आ गए, तभी से आना शुरू हो गया। साथ में ले आए, चलो साथ में पढ़ाऊंगा तुमको। तो देखा कि महाराज जी का यह कहना था कि पंचदशी के शब्दों को ज्यों का त्यों पकड़ करके चलते रहो, इतने सरल व्याख्या है। और ये एक बड़ी विशेषता इस ग्रंथ की, चलो बात आ गई तो बता रहा हूं, कि गुरु के कार्य को शिष्य पूरा करें, पिता के कार्य को पुत्र पूरा करें, ये तो एक बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जो पूर्वजों का अधूरा छूटा हुआ काम होता है उनको उनके पुत्र आदि पूरा करते हैं, गुरुजनों का कोई संकल्प छूट गया तो शिष्य लोग पूरा करते हैं। लेकिन शिष्य का संकल्प छूट गया हो और गुरु पूरा करें, ऐसा उदाहरण तो अगर आपको पंचदशी के सिवाय शायद कहीं मिले। विद्यारण्य स्वामी के जो विद्या गुरु थे भारती तीर्थ महाराज, विद्यारण्य स्वामी तो कहते हैं छठे प्रकरण तक ही लिख पाए और उनका शरीर नहीं रहा, तो गुरु को पता था कि मेरा शिष्य क्या लिखता था, गुरु शिष्य का जो संवाद चलता था, बात चलती थी, तो उनके भाव को फिर भारती तीर्थ महाराज ने पूरा किया है। इसलिए आप बहुत बड़ी विशेषता देखो कि शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो शैली विद्यारण्य स्वामी ने लिखी है वो कि वो शैली भारती तीर्थ महाराज की चल रही है, एक एक शब्द को ऐसा पकड़ करके चलते हैं और पद्य इस तरह के जैसे कोई हम गद्य समझ रहे हो, एक क्रम चल रहा है उसको पकड़ के चलते हैं तो सारा स्पष्ट हो जाता है। अब देखो इतने सुंदर उदाहरण देकर के बताया है कि दीप प्रभा मणि भ्रांति विसंवादी भ्रम स्मृत। दीप प्रभा की मणि जो मणि में जो मणि भ्रांति हुई है वही विसंवादी भ्रम है। दीप प्रभा भ्रम कहां हुआ है? प्रभा में। पर प्रकाश किसका था? दीपक का प्रकाश था। तो दीप प्रभा दीप का जो प्रकाश है वहां क्या हो गया? मणि भ्रांति, उसमें मणि की भ्रांति हुई है। प्रकाश दीपक का है और भ्रांति मणि की हुई है। कैसे उसको भ्रांति क्यों बोला? क्योंकि प्रकाश मणि नहीं है, प्रकाश मणि नहीं है और जिसका प्रकाश है वो भी मणि नहीं है। प्रकाश तो मणि है ये नहीं, पर जिसका प्रकाश है वो भी मणि नहीं है, इसलिए उस प्रकाश के द्वारा आगे बढ़ने पर उसको कतई मणि मिल नहीं सकती। तो ये कौन सा भ्रम हो गया? विसंवादी भ्रम। इसलिए विसंवादी भ्रम है। संसार में सुख मान करके दौड़ रहे हैं, ये कौन सा भ्रम है? यही विसंवादी भ्रम है। दुखालय में शाश्वतम है, दुखालय है और वहां सुख ढूंढ रहे हैं, ये विसंवादी भ्रम है। इसलिए कहते हैं कि जो चीज जहां है नहीं वो मिलेगी कैसे भाई? मणि प्रभा मणि भ्रांति संवादी भ्रम उच्यते। किंतु एक भ्रम हुआ है मणि प्रभा में, मणि की जो प्रभा है वो प्रभा तो मणि नहीं है, इसलिए भ्रम तो जरूर है वो भी, लेकिन जिसकी प्रभा है वो मणि है। तो यहां पर मणि प्रभा मणि भ्रांति, मणि के प्रकाश में जो मणि की भ्रांति हुई है उसको भ्रांति इसलिए बोला कि वो प्रकाश मणि नहीं है, वो तो भ्रांति ही है, परंतु फिर भी उस भ्रांति के द्वारा भी चूंकि जिसकी प्रभा निकल रही है वो मणि है, तो उस प्रकाश के द्वारा मणि तक पहुंचा जा सकता है। तो जिसकी भावना की गई थी और जिसमें भावना की गई वो वस्तु तो मणि नहीं थी, पर जिसकी भावना की गई थी उस वस्तु से वहां तक पहुंचा गया। नहीं समझे? उस प्रकाश से मणि तक पहुंच गए। मणि में तो मणि थी, प्रभा तो मणि थी नहीं, पर प्रभा से मणि तक पहुंच गए। तो मणि प्रभा मणि भ्रांति, मणि के प्रकाश में जो मणि की भ्रांति हुई है उसको संवादी भ्रम कहा जाता है। ये है लौकिक दृष्टि से प्रत्यक्ष जो भ्रम होता है, आंखों से जो भ्रम होता है उस भ्रम को यहां पर बताया। अब अगला जो श्लोक आ रहा है उसमें बताया अनुमान भ्रांति। मैंने कहा था ना कि तीन प्रकार की भ्रांति होती है, एक प्रत्यक्ष में भ्रांति होती है, एक अनुमान से भ्रांति होती है और एक शास्त्र से भी आगमन से भी भ्रांति होती है, आगम से भी। तो यहां पर ये तो होगी प्रत्यक्ष भ्रांति, प्रत्यक्ष माने अक्षण प्रति हमारी आंखों के सामने सब देख रहे हैं, ये भ्रांति है। वहां एक भ्रांति में जिसकी भ्रांति हुई थी वो चीज मिल गई और एक भ्रांति में जिसकी भ्रांति हुई थी उसका नामो निशान भी नहीं मिला, नामो निशान भी नहीं मिला तो विभ्रांति हो गई, विसंवादी भ्रांति, और जिसकी भावना हुई थी वो चीज मिल जाती है तो संवादी भ्रम हो गया। भ्रांति भ्रम एक ही चीज है। अब यहां पर देखो अनुमान की दृष्टि से बता रहे हैं, वाष्पम धूमतया बुद्ध्वा तत्रांगारानुमानतः बहिर्यदृच्छया लब्ध स संवादी भ्रमो मतः। वाष्पम धूमतया बुद्ध्वा तत्र अंगारानुमानतः। अब देखिए कहीं पानी उबल रहा हो, कड़ा में पानी चढ़ा रखा है पर पानी उबल रहा है, उसका वाष्प चढ़ रहा है, कहीं इसके पानी कड़ा में क्या है, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती है उसकी चिमनी जो बनाते हैं ऊपर वाष्प ऐसे निकलता है जैसे कोई धुआं निकल रहा हो, कई कई ऐसा होता है, तो वहां जो वाष्प होता है वाष्प में और धुआं में अंतर है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, ये सिद्धांत हुआ कि जहां धुआं है वहां अग्नि है, वो अनुमान से तो हुआ ना, लेकिन जहां जहां वाष्प है वहां वहां अग्नि हो कोई जरूरी थोड़े ही है। जहां वाष्प हो वहां अग्नि मिले जरूरी नहीं है। सर्दियों में देखो उधर राजस्थान आश्रम के सामने एक नदी है, तो सवेरे सवेरे नदी के पूरे उस एरिया पर ऊपर ऊपर एकदम धुआं दिखाई पड़ता, धुआं नहीं वो वाष्प होता है, नदी के पानी का वाष्पीकरण होकर के, जमीन की जो गर्मी होती है उससे पानी का वाष्पीकरण होकर के धुआं जैसा दिखाई पड़ता है, परंतु वहां जाए तो अग्नि कहां मिलेगी वो, तो वही उदाहरण यहां पर दे रहे हैं, धुआं में और वाष्प में अंतर होता है। वाष्प दिखने पर कहीं अग्नि मिल भी सकती है और वाष्प दिखने पर कहीं अग्नि नहीं भी मिल सकती है, संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम दोनों हो जाते हैं वहां पर। अगर कहीं फैक्ट्री में पानी उबल रहा है तो वहां वाष्प दिखाई पड़ रहा है, उस वाष्प को देख करके कोई जाएगा तो अग्नि मिलेगी निश्चित रूप से, लेकिन किसी नदी के ऊपर कोई वाष्प चढ़ा हुआ है और वहां यदि अग्नि की भ्रांति करके जाता है तो वहां अग्नि कहां से मिलेगी उसको, वहां तो कोई अंगारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए वाष्प में भी दोनों प्रकार की भ्रांति होती है, संवादी भ्रम होता है और विसंवादी भ्रम होता है, ये वाष्प में दोनों तरह का है, ये अनुमान है दोनों जगह पर। अब वाष्प में जो अंगारा की भ्रांति हुई है वो तो दोनों ही भ्रांति ही है, वाष्प कभी भी अंगारा नहीं हो सकता। आग धधकती हुई आग को अंगारा बोलते हैं, वो लकड़ी में जो अंगारा बन जाता है, तो वाष्प तो अंगारा है ही नहीं ना, तो वाष्प दृष्टि तो दोनों ही भ्रांति है, चाहे फैक्ट्री का वाष्प दिख रहा हो और चाहे नदी के पानी के ऊपर वाष्प दिख रहा हो, वाष्प तो दोनों ही भ्रांति है, दोनों अग्नि नहीं है। अब रही कि अग्नि जिसके निमित्त से प्रकट हो, क्या वाष्प जिसके निमित्त से प्रकट होती है उसको समझता कि वो अग्नि है, परंतु यह भी जरूरी नहीं है कि अग्नि से ही वाष्प निकल रहा हो, नदी के पानी में से वाष्प निकल रहा है, वहां कहां है अग्नि, वो विसंवादी भ्रम हो जाएगा। और फैक्ट्री के पानी में जो वाष्पीकरण दिखाई पड़ रहा है अगर वहां अग्नि की भावना करके जाता है तो वहां निश्चित रूप से नीचे अग्नि मिलेगी उसको। दोनों उदाहरण दे रहे हैं यहां, वाष्प धूमतया बुद्ध्वा तत्रांगारानुमानतः, वाष्प को धूम की दृष्टि से मान करके वहां पर अंगार का अनुमान करता है कि यहां अग्नि मिलेगी। वहनिर यदृच्छया लब्ध स संवादी भ्रमो मतः। यदि कोई व्यक्ति उस वाष्प को देख करके और वहां आग का अनुमान करके जाता है, कदाचित उसको वहां पर वन्नी की उपलब्धि हो जाती है, वन्नी लब्ध्वा लब्ध अग्नि प्राप्त होती है, तो यह समझो कि यह तो भगवान की कृपा है, देव कृपा है, यदृच्छया देव योग से मिल भी जावे बाबा, हाँ? वो बेचारे को अग्नि की जरूरत थी, ठंडे मर रहा था और वाष्प दे करके गया, उसकी किस्मत से यदृच्छया देव योग से कोई मिल गई, अग्नि तो मिल गई, तो मिल गई तो फिर वो कौन सा भ्रम हुआ? कहते वाष्प तो अग्नि थी ही नहीं, पर उसके माध्यम से जो अग्नि मिल गई उसकी किस्मत अच्छी थी, तो ये हो गया उसको संवादी भ्रम, वाष्प देख करके अग्नि तक पहुंच गया। और अब उस दूसरा उदाहरण यहां पर दिया, नहीं विसंवादी का देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि जैसे नदी का पानी है वहां वाष्प देख करके कोई जाए कि वहां अग्नि मिलेगी, तो अग्नि नहीं मिलेगी, वहां नदी का ठंडा ठंडा पानी मिलेगा, वहीं से वाष्प निकल रहा था। तो भूमि की जो एक सूक्ष्म नीचे की गर्मी होती है उसे नदी आदि से वाष्प उठता रहता है, तो वहां अग्नि मिलेगी नहीं, वहां हो गया विसंवादी भ्रम। इसी प्रकार से वो तो अनुमान का उदाहरण दिया, अब तीसरा उदाहरण देते हैं आगम। आगम की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से भी देखो यहां पर भ्रम हो जाता है। कहां भ्रम हुआ है उसका अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। गोदावरी उदकम गंगोदकम मत्वा विशुद्धये संप्रोक्षे शुद्धि मापनोति स संवादी भ्रमो मतः। घर में दो बोतल में पानी भरा हुआ है, एक में गोदावरी का जल है और एक में गंगा जी का जल भरा हुआ है। कोई व्यक्ति बाहर से आए, किसी कारण से उसने अपने को अशुद्ध महसूस किया हो, किसी कोई अस्पर्शनीय वस्तु आदि का स्पर्श हो गया हो, उसको गलानी हो रही हो कि मैं अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, तो क्या करूं? बोले स्नान करके ऊपर से गंगा जल का छींटा लगा लूं ऊपर तो शुद्ध हो जाऊं। अब वो बेचारा बाहर से आया और स्नान किया, स्नान करके और पवित्रता पाने के लिए उसने बोतल उठाई और उसका छींटा लगा लिया। बाद में समझ में आई कि ये पानी तो गोदावरी नदी का था और गंगा जल तो रह गया। अब ये बताइए, गोदावरी जल का छींटा लगाने से उसको शुद्धि मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी। क्यों? अरे भाई, गंगा जल की भावना से उसने जो किया है उसका कारण कि गंगा का जल भी पवित्र करता है और गोदावरी का जल भी पवित्र करता है, उस जल में पवित्र करने की शक्ति दोनों ही जल में है, दोनों में है उसमें, इसलिए पवित्रता तो प्राप्त हो गई। अब पवित्रता तो उसको प्राप्त हुई लेकिन जल तो गंगा जी का नहीं था, हैं? वो तो गोदावरी का था। तो गोदावरी उदकम गंगोदकम मत्वा विशुद्धये, विशुद्धि पाने के लिए गोदावरी के जल को गंगा जल समझ करके संप्रोक्षण किया और उससे शुद्धि मापनोति, उसको शुद्धि प्राप्त हो गई। तो इसका अर्थ हुआ उसका उद्देश्य क्या था? शुद्धि प्राप्त करना। जैसे पीछे एक का उद्देश्य था मणि प्राप्त करना, दूसरे का उद्देश्य था अग्नि प्राप्त करना, यहां वाले का उद्देश्य था शुद्धि प्राप्त करना, तो शुद्धि तो मिल गई। अब गंगा जल नहीं होते हुए भी गोदावरी के जल से भी अब जल में तो उसको भ्रम हो गया, लेकिन फिर भी जिसको उनसे पाना था वो चीज तो मिल गई ना, शुद्धि तो मिल ही गई, इसलिए संवादी भ्रम है। तो जिसकी भावना थी, जिसको पाना चाहता था वो चीज मिल गई, ये हो गया संवादी भ्रम। अब यदि कल्पना करो इस जगह पर कि वो गोदावरी जल भी ना हो और नल गंगा का जल हो, तो भी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ये आगम का उदाहरण है ना। कौन से शास्त्र ने प्रमाण से कहा कि नल का जल भी शुद्ध होता है, शुद्धिकरण करता है? अब यहां पर शास्त्र प्रमाण की जरूरत पड़ गई। गंगा जल क्यों शुद्ध करता है, गोदावरी जल क्यों शुद्ध करता है, वहां तर्क काम नहीं करता, वो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र ने कहा है कि शुद्ध वही करेगा, और नल का पानी शुद्ध करता है ये शास्त्र में कहीं कहा नहीं गया। इसलिए यदि उस बोतल में कोई तीसरी बोतल पड़ी हुई होती नल जल की और उसका छेटा लगा दिया होता तो शुद्धिकरण प्राप्त नहीं होता, शुद्ध नहीं होता वो, तो वो हो गया विषमवादी भ्रम। जो शुद्धि चाहिए था शुद्धि मिली नहीं, और यदि गंगा जल की बजाय गोदावरी जल का छेंटा लगा करके भी शुद्धि प्राप्त हो गई तो वो गया संवादी भ्रम। इसका अर्थ हुआ कि शास्त्र जो प्रवृत्ति करवा रहा है वो प्रवृत्ति भी वैसे ही होगी, भ्रम तो भ्रम ही होगा, लेकिन भ्रम होते हुए भी शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो प्रवृत्ति है वो इष्ट की प्राप्ति कराने वाली होगी। जैसे शुद्धि की प्राप्ति करवा दिया जल ने, ऐसे शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपादित है। अब आप देख लो ना मंदिर में बाबा किसी को मरे हुए को छू करके शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल का छेंटा लगाया, मृत आत्मा को छू लिया शरीर को तो अच्छा शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का छेंटा लगाओ, गोदावरी जल का छेंटा लगा दिया, और यदि बाह्य जल का लगाया तो शुद्धि नहीं हुई। मंदिर में गए और एक पुजारी संघ दमदमा रहा है, एक व्यक्ति मरे हुए पाड़े का चामड़ा कूट रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, और वो भी मंदिर के अंदर। जैसे मंदिर में शुद्धि के लिए जाते हैं वहां मरे हुए पाड़े का कच्चा चमड़ा पड़ा हुआ है और नगाड़ा बज रहा है, आप देख लो क्या वो शुद्ध होगा? अब हमारी दृष्टि क्या कहेगी? वो शास्त्र दृष्टि ही काम करेगी। खास करके भगवान की पूजा में निराजन में जल आरती करते हैं, शंख में भर करके आरती करते हैं जल को। अब बताओ एक मृत प्राणी के बाह्य आवरण ही तो है उसका, और वो भगवान की आरती में काम आ रहा है। जहां हम लोग भी स्नान किए बिना नहीं जा सकते, परम पवित्र होकर के जाते हैं, देवो भूत्वा देवान यजेत, आया देवता बनकर के देवताओं का यजन करो, और वहां पर मरे हुए एक प्राणी के कवच से और भगवान की पूजा की जा रही है, वह शास्त्र ही प्रमाण है। अब वह शंख अशुद्ध क्यों नहीं है, नगाड़ा की चमड़ी अशुद्ध क्यों नहीं है, वहां तर्क काम नहीं करेगा, वह शास्त्र काम करेगा, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए यहां पर कहते हैं यह संवादी और विसंवादी जो भ्रम है वो शास्त्र से भी होता है। शास्त्र ने जिसको कहा है वो उसको इष्ट वस्तु की प्राप्ति तक पहुंचा देता है। घड़ी इनकार कर रही है तो इसको थोड़ा एक एक क्रम से करके दो दिन में हो जाएगा, फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए, महाराज जी बहुत ही ईश्वर की कृपा रहे कि मणि के दो दो बार हमें यह सुनाई दिया, तो मणि का जो भाव है पूरा ठोस हो गया है, अभी होने जा रहा है, अभी भी एक दिन है, तो प्रति जरूरी है यह हमें मिलना, और पूज्य महाराज जी से उसका पुनरावर्तन हमें पूरा मिल रहा है, तो वो ईश्वर की दया है। एक बचपन में एक सुंदर गाना सुनते थे, अभी थोड़ा याद आया, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। तो वो जो मुट्ठी जो हमारी बनती उसमें ऐसा सत्संग का मणि महाराज जी ने स्टैंप डाल दिया है कि लगता है कि जो भी किस्मत है वो खिल जाएगी, और उसी का यह दर्शन पूज्य महाराज जी के प्रवचन में हो रहा है। महाराज जी हमारे बीच में बड़े स्वस्थतापूर्वक 15 तारीख तक तो हम उनको सुनेंगे ही सुनेंगे, और इस तरह का प्रवचन हमें प्राप्त हो रहा है। महाराज जी ने इस प्रातः प्रवचन में बताया प्रेमपुरी तो तीर्थ स्थान है, तो यहां नल और गंगा की बात भी नहीं है, यहां जो भी प्राप्त हो रहा है वो ब्रह्म ज्ञानी है, और ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए मुक्ति के लिए हमें पूरा उत्तरदायित्व है हमें कि हम यहां प्रेमपुरी में इस संतों से सुने और अपना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति तक पहुंचे। तो ऐसी सुंदर पूज्य महाराज जी ने सुंदर शुभ आशीर्वाद दे ही दिया है। तो आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम। पूज्य महाराज जी प्रातः प्रवचन में भी ईशावास्य उपनिषद 15 तारीख तक हमारे साथ है, उसका भी हम लाभ लें। हरिओम।